फिर आप देखिए कि इस आयत के बाद एक और आयत इसी मौजू की दलील में नोट कर ले, आपके लिखी हुई किताब में सूरत अनकबूत की पहली तीन आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन नासु युतरकु, क्या लोगों ने ये गुमान किया कि वो छोड़ दिए जाएंगे? अल्लाह विल लेट देम गो, क्या अल्लाह ताला उनकी टेक केयर नहीं करेगा? किस बात पे? अई यकूलु आमन्ना, सिर्फ मुंह से कह दिया कि हम ईमान ले आए, क्या मतलब है? आप देखिए कि क्या अल्लाह ताला लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पे बस छोड़ देंगे? वहुम ला युफ्तनून, और क्या उनकी आजमाइश नहीं होगी? अल्लाह ताला यहाँ इस आयत में आपको मुझे सिखा रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी कीमत वसूल करवाता है। देखिए, ये वो कलमा था जिसने 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में रोड़े अटकवाए। ये वो कलमा था जिसकी कीमत पे सहाबा को टॉर्चर मिले। तो क्या मुझे आपको ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर छोड़ दिया जाएगा कि चूंकि हमने अब ला इलाहा कह दिया अब छोड़ दो? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद तो सारी पाबंदियां लगती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद ही तो असल काम शुरू होता है। तो ये जो मैंने आपने आज एक रवैया देखा है ना मुसलमानों का, चूंकि हम मुसलमान हैं इसलिए जन्नत में जाएंगे, बिकॉज वी आर मुस्लिम जन्नत हमारा भाई घर है, ये आयत उसकी खुशफहमी को दूर करती है। अल्लाह ताला कहते हैं, मिसाल आप इसको इस तरह ले लीजिए कि जैसे एक एम्प्लॉई है, वो किसी जगह जॉब के लिए एप्लीकेशन देता है, फिर इंटरव्यूज के बाद उसकी जॉब फाइनल हो जाती है। असल काम किस दिन शुरू होता है? जिस दिन एग्रीमेंट साइन होता है। अब उसको अगले दिन 9 बजे जाना है, अब उनकी वर्कशीट को फॉलो करना है, अब उनको रिजल्ट्स देने हैं, रिपोर्टिंग करनी है, फिर ही होता है ना। वो एम्प्लॉई जो सारे काम कर करा के एग्रीमेंट लेकर आके घर सो जाए, भाई उठो जॉब पे जाओ, कहते नहीं जॉब तो पक्की हो गई है, भाई जाके चलो भेजे बीवी घर से जबरदस्ती, वहां जाके सो जाए, वहां जाके चाय पानी में, वहां जाके अपनी फेसबुक पे खेल रहा है, क्या जी भाई आ जाओ क्यों इधर, तो इतना काफी नहीं है? कोई जॉब आपको ज्यादा दिन नहीं रखेगी अगर आप वहां काम नहीं करें। बस यही याद है, हसीबन नास, अल्लाह हम सब मुसलमानों को, अगलों पिछलों को इस एक आयत में डांट रहे हैं, ओ मुस्लिम्स, अगर तुमने खुद को मुस्लिम कहा है तो अब इसके तकाजे दिखाओ, पूरे करो, दुनिया को दिखाओ तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो, तुम काल अल्लाह और काल रसूल पर ईमान रखते हो, फिर अब करो। वहुम ला युफ्तनून, आजमाइशें तो आएंगी, हम इतनी सी नहीं बर्दाश्त करते, सिर्फ किसी के माथे पे तेवरी आ जाती है हमारा हुलिया देखकर, हाँ कहते नो 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 नो, पीयर प्रेशर में आ जाएंगे, लोग कहेंगे ये फनेटिक है। मैं कहती हूँ ये तो बेचारे बदनाम है ना, चंद लोग पाबंदियों का नाम लेकर गैर मुस्लिम, हम तो अपने मुसलमानों में नहीं अपने इस्लाम का इजहार कर सकते। मैंने तो खुद दुपट्टे खींचते देखे लोगों के, ये क्या मासी बन गई हो, इस हुलिया में हो तो नहीं जाना। एक औरत कहने लगी, मेरे हस्बैंड कहते मैं तुम्हें आगे नहीं बिठाऊंगा गाड़ी में अगर तुम पर्दा करोगी, तो मैंने कहा पीछे बैठ जाए, पीछे की सीट ज्यादा बड़ी है, मसला क्या आपका भाई, नहीं बिठाते तो ना बिठाए। एक औरत यहां से पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार होंगे अपने, तो कहने लगे तुम इस हुलिये में जाओगी तो मैं तो नहीं तुम्हें गाड़ी में साथ लेके जाऊंगा, ये अपने रिश्तेदारों की बातें। ये बदनाम है बेचारा अंग्रेज हम पे पाबंदियों की बात करके, हमने तो अपने नफ्स पे पाबंदियां लगाई हैं। क्या आप पाकिस्तान में पीसी होटल में वलीमे की दावत में जा रहे हैं, आप जा सकते हैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक हुलिया बनाकर? आपके तो कदम मन मन भर के होंगे। क्या आज हम अपने ही मुसलमानों के फंक्शंस पे जा सकते हैं? मैं सोचती हूँ कि आज हम अपनी खुशियों को ऐसा बनाते हैं कि फरिश्तों को तो बाहर निकाल दो, और अगर रबीउल अव्वल का महीना है, अगर अल्लाह के नबी बिलफर्ज आ ही गया आपके कहने पे, तो किसी एक शादी को भी जाके देखा है तो अंदर दाखिल होंगे आपके शादी में? क्या हम कभी सोचते इस बात को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज के दौर में इस शहर में होते तो क्या हम उनको अपनी खुशी गम में बुलाते और वो आते, और वो खुश होके जाते कि नाराज होके जाते? तो बरकत कहां से आएगी फिर? ये आजमाइश है, ला युफ्तनून ये आजमाइशें हैं। देखिए अपनी खुशियों अपने गमों को अल्लाह और उसके रसूल की पसंद नापसंद के मुताबिक ढालना। आज हम अभी इस पे नहीं काम कर सके, हमने कहां फतह करने इलाके, हमने कहां बेचारे गैर मुस्लिम्स को दावा करनी है? हमें तो ये बात पता ही नहीं है कि लोग अल्लाह की बात ना मानने की सजा दुनिया में भुगतते हैं, तो लिहाजा ये तो होगा, अल्लाह की सुन्नत है। वलकत फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और अलबत्ता हमने तो आजमाया था उन लोगों को जो इनसे पहले थे। आपके पास जब एक सहाबी आए और बड़े तकलीफ में थे कि अल्लाह के नबी कब आएगी मदद, हबाब बिन अरद के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी के पास आए जिस वक्त आप खाना काबा के मतलब पर्दे को या उसकी दीवार को टेक लगाए बैठे थे, तो सहाबे कराम नबी सल्लम के पास आए तो कहने के मता नसरुल्ला, अल्लाह के नबी मदद कब आएगी? تو اللہ کے نبی سیدھے ہو کر بیٹھے اور آپ کے چہرے پہ غصے کی ناراضگی کے تاثرات تھے. آپ نے فرمایا تم سے پہلے کے لوگوں کو آروں سے چیر دیا جاتا تھا, ان کو تو آگ کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا تھا, لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو. میں سوچتی ہوں اگر حباب بن عرت کی حالت دیکھ کے اللہ کے نبی نے یہ کہا تم جلدی کرتے ہو, تو ہم آج کے مسلمانوں کو اب کیا کمنٹ دیں گے؟ میرا خیال ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ تم مسلمان ہو بھی, کیا واقعی تمہارے اوپر اس اسلام والی کوئی خوہ ہے؟ اسی لیے فرما دیا فلا. اب یہ آخری حصہ دیکھیے آیت کا, کیوں آتی ہیں یہ مشکلات, یہ پابندیاں کیوں لگتی ہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اس پہ رکھیے, یہ ہے آزمائشوں کا مقصد. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کنہوں نے سچ کہا. صدقو اردو میں صدق ہے نا, صادق صدق مصدق کیا معنی ہوتا ہے, کیا سچ کی بات ہے ادھر, کس نے سچا کلمہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ مراد ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور وہ خوب جان لے جھوٹوں کو. ذرا اس آیت پہ غور کریں نا تو ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. اس کو عربی زبان میں استفہام انکار کہتے ہیں, کوشچننگ سٹائل ہے لیکن نو کہنے کا مطلب ہے. جیسے جیسے آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں تمہارا ارادہ کیا ہے, تو اب ارادہ کیا میں آپ بچے کا ارادہ نہیں پوچھ رہے ہوتے, اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو. یہاں بھی بالکل یہی بات ہے جو ہمیں سامنے سمجھ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ جماعت جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چنا تھا, وہ کس لیے تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشکلات آ رہی تھی اس پہ صرف یہ پوچھ لیا کہ مشکل کب ٹلے گی. آج کے دور کے مسلمانوں کو اسے عقائد پہ سوچنا ہے. یہ چھانٹی ہو رہی ہے, چھانٹی کا لفظ سنتے, سلیکشن, جو ان فتنوں کے دور میں, جو ان آزمائشوں کے دور میں اپنے دین پہ جمے گا وہ سچا ہے. اور دوسرا بندہ آپ کو جان رہے جو لکھا ہوا ادھر. ہم کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ اس وقت ہم موضوع اتنا سینسٹیو پڑھ رہے ہیں. جب زندگی میں جب اسلام پر کوئی بات آئے, اسلام سے مراد ہم سب مسلمان ہیں, انفرادی اجتماعی جو بھی بات ہے, یہ اصل میں آپ کا میرا ٹیسٹ ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو باقی بچا کھچا اسلام بھی اپنا بیچ دیں گے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, پرانی مثال ہے لیکن آپ کو یاد ہوگی. 9/11 کا نام سنا ہے آپ نے, 2001 تھا میرا خیال ہے, یا بس پرانی بات ہے. اس دن ایک فتنہ اٹھا تھا نیو یارک کے ایک شہر میں, آپ سب کو پتہ ہے عمارت گری اور جو کچھ بھی ہوا. اس ایک فتنے نے, اب یہ جو بات کہہ رہی ہے نا وہ بالکل اس ایک آیت پہ لے کے کہوں گی, اس ایک فتنے نے کتنے نام نہاد مسلمانوں کا اسلام ختم کر دیا. گاڑیوں میں سے قرآن نکل گیا, ناموں میں سے لفظ محمد نکل گیا, عبداللہ نکل گیا, اور بچوں کی لڑکوں کی داڑیاں گئیں, عورتوں کے حجاب گئے. کیوں؟ باہر جانا ہے, خبردار. میں خود امریکہ میں تھی اس وقت, نہیں گئی تھی, اور وہاں یہ ساری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. آنکھوں سے دیکھا ہم نے لوگوں کو اسلام کے لبادے سے نکل کر اندر کا نفاق باہر لاتے. ایک طرف یہ ہوا, اور دوسری طرف آپ کو پتا کیا ہوا؟ اس 9/11 کے واقعے کے بعد جتنا اسلام پھیلا, نان مسلم آئے, قرآن بکے. ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں وہاں دارالسلام کمپنی جن کی ہے, جو ورلڈ وائڈ ان کے قرآن اور انگلش کی بکس بہت ساری ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس واقعے کے بعد ریکارڈ سیل ہوئی ہے ہماری کتابوں کی, اور خاص طور پہ قرآن. اور کدھر جا رہے ہیں؟ جیلوں میں. کدھر جا رہے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے کیا دین, ذرا ہم سیکھیں. یہ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اور كَذِبِينَ. یاد رکھیے جب کوئی بھی ایسی آزمائش آتی ہے نا مسلمانوں پہ, ورلڈ وائڈ ہو یا کنٹری وائڈ ہو یا جسٹ لائک فیملی وائڈ ہو, اس میں آپ کی پولرائزیشن ہوتی ہے. سمجھتے پولرائزیشن؟ جب آپ وہ مقناطیس رکھتے ہیں نا تو اس کے بیچ میں تو کچھ پولز ہوتے ہیں نا, کوئی نارتھ اور ساؤتھ, وہ اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جا کے, اور جو وہاں اصل میں نہیں لوہا ہوتا وہ الگ ہو جاتا ہے, بالکل ان کو کھینچ دیا جاتا ہے. یہ آپ کی میری آزمائش ہے, اور یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, یہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے. صرف لوگ آپ کو کہیں گے سیمیلیٹ کر لو, اٹس اوکے, بی جینٹل, پھر اب آپ نے اپنے بچیوں کو یہ تو نہیں کرنا. ایک وہ دور تھا, آپ ہم سب جب چھوٹے تھے نا, چھوٹے سے مراد کے جوانی کا شروع کا وقت ہوتا ہے, تو ماں باپ کیا کہتے تھے؟ بچیوں کو پین اڑا کے بھیجو, ان کی عزت نہ لوٹے, کوئی ان پہ گندی نظر نہ ڈالے. ایک وقت تھا نا کہ بہو بیٹیوں کو الگ نہیں کرتے تھے. مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے والد نے, جب میری بہن نے کالج میں داخلہ لینا تھا اسکول کے بعد, تو انہوں نے دو ہی شرطیں لگائی تھیں کہ ایک تو آپ کے جانے آنے کا انتظام ایسا ہوگا کہ مجھے باؤنڈ نہیں ہونا پڑے, اور دوسری بات ہے آپ کو پردہ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ دو باتیں منظور ہیں, آپ جائیے کالج میں. تو وہ گئی الحمدللہ. एक वो दौर था कि हम अपनी बेटियों को बाहर निकालने से पहले कहते थे कि देखो अगर पर्दे में जाना है तो चली जाओ, आज ऑपोजिट है। आज मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है कि ये अकेली बसों में जाती हैं, ये अकेली वैगनों में जाती हैं, ट्रेनों में जाती हैं, तो अगर ये मुसलमान रूप में ये गज का टुकड़ा सर पे ले जाएंगी तो लोग कहेंगे ये मुसलमान है, तो बेटा जाना है तो वेस्टर्नाइज बन के जाओ, तो फिर मुझे फिक्र नहीं है, फिर चली जाओ। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। इसके बाद बाकी बातें क्या रह जाती हैं? तो अल्लाह के कानून एक ही है, अल्लाह की बातें सच हैं। आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर, यानी आपको किसी मुल्क में लीगलाइज कर लिया गया, आपको एक्सेप्ट कर भी लिया गया, आपको वहां की सिटीजनशिप भी मिल गई, मिसाल देती हूँ, कपड़े भी उतरवा लेंगे, कल उतार देंगे, इसलिए कि हमें तो ये काम लेना ही लेना है, हमें तो ये करना है, हमसे वो गलत बातें मनवाएं, लेकिन अगर अल्लाह ताला की नजरों से हमारा मुकाम निकल गया तो क्या होगा? अगर हम अल्लाह के जन्नत में अपनी सिटीजनशिप चाहते हैं तो फिर याद रखिए उसको गोल बनाएं, अल्लाह की कसम दुनिया की सिटीजनशिप कहीं नहीं जाएगी। लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्ध। और लोग हंसते हैं, कभी आप रिपोर्ट्स तो पढ़कर देखिए, गोरे हमारे हाल पे हंसते हैं, कहते हैं देखो ये है मुसलमान। ये चीज़ें आप कोट करें, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे खुद वेस्ट में आने का मौका दिया, और मैंने आपसे ज़्यादा घूम के दुनिया देखी है। हर मुल्क के मुसलमानों को देखकर मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि अगर आज हमें अपने इस्लाम का यकीन होता तो ये सब लोग हमारे फ्रेंड होते, ये अल्लाह के भी फ्रेंडली हो जाते, ये रसूल के भी फ्रेंडली होते, ये मुस्लिम फ्रेंडली भी होते। ये हमने अपने गंदे किरदार और अपनी ड्यूल पर्सनैलिटीज और अपनी डबल स्टैंडर्ड से इनको अपने ऊपर बात करने का मौका दिया। एक बच्ची जब पाकिस्तान से वो मूव हुई, उनकी बच्ची 12-14 साल के करीब अर्ली एज जैसे यंग की थी, तो वो पाकिस्तान में एक कोर्स भी करके आई थी, तो उस बच्ची के स्कूल में गई और कहने लगी कि मेरी बच्ची स्कूल में अबाया पहनती थी और हिजाब है तो वो यहाँ भी पहनेगी। खैर स्कूल वालों ने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की, कोई दलाल दें, ये घर आई, इन्होंने सूरत नूर की आयतें वगैरह सारी निकाल कर एक थीसिस बनाया और उनको दिया। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल वालों ने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं, बच्ची जो भी करे पहन ले। कुछ अरसा गुजरा, उसी स्कूल में एक और बच्ची आई और वो मुस्लिम थी और वो अरब थी, और उसके पेरेंट्स ने उस बच्ची के लिए जिस चीज़ की इजाज़त मांगी वो क्या था कि पैंट के अंदर शर्ट करने की बजाय मेरी बच्ची को शर्ट बाहर करने की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने नहीं दी। भाई क्यों नहीं दी? तो वो लेकर आए और वो उस मुसलमान बच्ची के पास लाए, कहने लगे अगर तुम मुसलमान हो ना तो फिर ये पहनो जो इस बच्ची ने पहना है, शर्ट बाहर करने से तुम मुसलमान नहीं हो जाओगे। बात समझ गए? ये आधा तीतर आधा बटेर बनना, आधा दीन आधा दुनिया, कहीं के भी नहीं रहते। दुनिया में कहाँ इज्जत रहती है? डबल फेस हो, यहां बैठे कोई बात करें, बाहर जाके आप दूसरी बात करें, तो दुनिया में भी इज्जत नहीं रहती। आज हमारी मुसलमानों की बेइज्जती और हम पे जो मुश्किलात आई हैं उसकी बहुत बड़ी वजह ये हमारे डबल स्टैंडर्ड है। पूरे यकीन के साथ अल्लाह के दीन को फॉलो करें और अल्लाह से मदद मांगें, इंशाल्लाह ये सारी मुसीबतें मुश्किलात पीछे हो जाएंगी। फिर आप देखिए, अभी हम पहली किस्म डिस्कस कर रहे हैं ना कि आजमाइश होती हैं, अगर ये आजमाइश है तो अल्लाह की तरफ से है। हदीस लिखी हुई है पेज 49 पे, देखिएगा, इमाम तिर्मिजी और इब्ने माजा ने हजरत साद बिन अबी वक्कास से रिवायत नकल की, उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह अय्युन्नास यशद्दु बलान, अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे कड़ी आजमाइश किन की है? अच्छा कुछ लोग हैं ना वो अपना नाम लिख लेंगे, सबसे बड़ी मेरी ही मुश्किल है। यानी बाज़ दफ़ा लोगों को अपने पे आने वाली छोटी सी मुश्किल बड़ी लगती है। बाज़ ख़वातीन कहती मैं बड़ी आजमाइश में, क्यों? मेरी मासी नहीं टिकती, ये बड़ी आजमाइश है मेरी, हैं वो मेरे मियाँ दूसरी शादी का सोच रहे हैं, मेरे से बड़ी आजमाइश कोई नहीं है। यानी अपने पे आती है तो हम बहुत छोटी सारी को बड़ा कर देते हैं। तो सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी दुनिया में सबसे ज़्यादा आजमाइशें किसकी हुई? तो आपने क्या फरमाया? अल अम्बिया, नबियों की। सुम अल अमसलू फल अमसलू, फिर उसके बाद जो उन जैसा था, फिर जो उन जैसा था। युब तलल अब्दु अला हसबी दीन ही, इस हिस्से को हाईलाइट कर ले। आजमाया जाता है आदमी अपने दीन के मुताबिक। फइन कान फी दीन ही सुलबन इश्तद्द बलाउहु वइन कान फी दीन ही रिक्कतुन उबतलिया अला हसबी दीन ही फमा यब्रहुल बलाउ बिल अब्दी हत्ता यत्रुकहु यमशी अलल अर्दी वमा अलैहि मिन खतियतिन। यकीन करें यह हदीस याद करने वाली है, इतनी खूबसूरत रिवायत है। इसका एक स्ट्रेच में तर्जमा देखिएगा, साहबी ने जब पूछा कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा आजमाइशें किस पे आती हैं, तो आपने फरमाया अंबिया पर, फिर दीगर लोग दर्जा ब दर्जा। बंदे की आजमाइश इसके दीन के मुताबिक होती है, अगर वो अपने दीन में मजबूत हो तो इसकी आजमाइश भी कड़ी होती है, अगर इसके दीन में कमजोरी हो तो इसे भी इसके दीन के बकदर आजमाया जाता है। आजमाइश बंदे के साथ चिमटी रहती है यहां तक कि वो इसे इस हालत में जमीन पर चलते हुए छोड़ती है कि इसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं रहता। क्या समझ आई बात की? नबियों से ज्यादा आला ईमान तो किसी का नहीं होगा, और दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइशें तो नबियों की हैं। आप देख लीजिए, जरबुल मिसल है, हर रिश्ते की आजमाइश नबियों की सूरत में मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अपना बेटा आंखों के सामने डूब रहा, अपनी बीवी जो वो इस्लाम नहीं ला रही है, हजरत इब्राहिम का बाप इस्लाम पे नहीं आ रहा बल्कि बेटे को कहता है मैं तुझे रजम कर दूंगा, पत्थर मार दूंगा। फिर आप देखिए बीमारियों की सूरत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सोशल प्रेशर की सूरत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा को एक सियासी लीडर के नाते से कितना समाया गया, हजरत ईसा की तो जान लेने की कोशिश की गई, और रह गए अपने प्यारे नबी। तो जितने कातिलाना हमले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुए, इतने तो किसी और पे नहीं हुए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनकी आजमाइशें और आज हम अपनी आजमाइशें देखें। मैं अक्सर बैठ के सोचती हूँ कि जो हकीकी आजमाइशें सहाबा की हुई, अगर आज हमारी होती तो हम तो कब के खैर बात कह चुके होते इस्लाम को कि हमसे नहीं ये रखा जाता, संभालो तुम। तो यही बात यहां बताई गई कि इंसान की आजमाइश उसके ईमान ज़ोफ कुव्वत नक्स पे होती है। मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी, जैसे आप देखिए कि एक माँ है, उसकी दो बेटियां हैं, एक बेटी का ईमान बहुत आला है, एक कम ईमान वाली है। आप देखेंगे ज्यादा ईमान वाली बच्ची जो होगी ना, उस पर ज्यादा आजमाइशें आएंगी। एक तो अल्लाह और निखारना चाहता है, अल्लाह ताला दुनिया के दर्जे बुलंद करवा देता है, और दूसरी बात इसमें यह भी होती है कि अल्लाह ताला छांट रहा होता है, अल्लाह उनके दीन को निखारता है। जैसे आप ये लफ्ज फितना हम बोलते हैं ना उर्दू में भी, अरबी का लफ्ज है असल में, फितने के लफ्ज के अंदर पता क्या मानी है कि धात को यानी मेटल को आग में डालना ताकि उसका खोट अलग हो जाए। सोना कभी पिघलता देखा हो, ये तो सुना ही होगा ना, सोना पिघलाया उसमें से खोट निकला। ये जो आजमाइशें होती है ना, ये हमारे खोट को अलग करती हैं, और यकीन करें कि ये बहुत मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगला टॉपिक जब हमारा आएगा तो आप खुद देखेंगे आजमाइशों की मुख्तलिफ किस्में भी हैं। आप अपने ईमान के मुताबिक थोड़ी चीज को बड़ा समझ रहे हैं या बड़ी को छोटा समझ रहे हैं। कुछ का जिस्म का एक एक अंग बीमार होता है, हाल पूछिए क्या आला कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कुछ तो सुनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लोग क्या कहते हैं, कुछ बोले। मसलन जैसे एक साहबी थे या कोई ताबी थे, शायद बुजुर्ग थे, तो बीमार थे। किसी ने उनसे पूछा सुनाइए क्या हाल है, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हाल है, कोई इमाम थे, नाम ना लिखे, बस कोई भी एक शख्सियत थी। कहने लगे क्या हाल है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जो देखने आए उनकी तीमारदारी का, कुछ तो कहिए, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो दर्द तो नहीं है? जब उसने ज्यादा कुरेदा तो कहने लगे मेरे भाई मैं जो बात नहीं कहना चाह रहा तो मुझसे क्यों बुलवा रहे हो। हमारा हाल, अल्लाह रहम करे कोई हमारा हाल पूछे तो जाए किधर, ऐथे पीड़ ओथे पीड़, ऐ दुखदा ओ दुखदा। भाई अब इस उम्र में दुख नहीं है, आप क्यों लोगों को अपनी उम्र बताते हैं, तो हजम नहीं होता। अच्छा आपको पंजाबी आती? मुझे नॉर्वे में रहते हुए ना लोगों को खुश करने के लिए पंजाबी बोलने की आदत होगी। कई अम्माएं ऐसी आई होती हैं, वो मेरे ये 2000 पंजाबी के जुमले सुनने के लिए बेचारी सब्र कर रही होती हैं, क्योंकि तो लेकिन कोई बुरी बात तो नहीं है पंजाबी बोलना, जो आती है जुबान तो बोलनी है ना। तो लोगों को अपना दुख सुख ना दिखाएं, याद रखिए खुशी भी अंदर रखें गम भी अंदर रखें। लोगों के लिए आपकी जुबान में बस दो ही जुमले होने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा वो मेरे मामलात मतलब मेरी करतूतों से तो बहरहाल अच्छा है, मैं तो इससे ज्यादा डिजर्व करती थी। बस एक हाय सर में दर्द है, भाई शुक्र करो कैंसर तो नहीं है। हाय बुखार, हाय बुखार, शुक्र करो फालज तो नहीं हो गया। तो आप देखेंगे कि ये एटीट्यूड आपका बदल देता है आपके रवैये को, और तकलीफ कम लगती है। तो हर वक्त वावेला नहीं करना, इस हदीस का ये हिस्सा याद कर लीजिए, मैं बोलती हूँ आप जरा मेरे साथ दोहराएंगे। ये अरबी का लफ्ज युबतलल अब्दु अला हसबी دینه. پھر پڑھتے ہیں
یبتل العبد
على حسب دینه. یبتل کا مطلب ازمایا جاتا ہے، العبد بندہ، على مطابق، حسب حسب یعنی حسب حال جس کو کہتے ہیں، دینه اپنے دین کے مطابق. جتنی بھی بندے کی طاقت ہوتی ہے یا اس کی وسعت ہوتی ہے تو اتنا ہی اس کے اوپر بڑی ازمائش آتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں پہ تو کوئی ازمائش نہیں آتی، تو شکر کیجئے نہیں ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے ازمائشوں کے پردے میں اللہ تعالیٰ ہمارے نفاق کو چھپا لیتا ہے. بعض دفعہ ہم پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، شکر کیجئے پابندی لگی ہوئی ہے، منافقت چھپی بھی ہے، کیونکہ پابندی اٹھ بھی گئی تو آپ نے کرنا کام پھر کوئی نہیں دین کا. اور یاد رکھیے یہ بات، آپ میرے ساتھ اس وقت نوٹ کر سکتے ہیں کہ بندے کا جو اندر ہوتا ہے نا، اندر سے کچھ لوگ ہوتے بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں، فراخ دل ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی بات کوئی کہہ دے کہتے پھر کیا، پھر کی اور بھی کہہ لو، جتنا کہنا کہہ لو، مینوں کی فرق پہندا. یہ اندر کی عاجزی ہوتی ہے. کچھ لوگ دیکھنے میں بڑے عاجز مزاج لگتے ہیں پر اندر سے وہ پتھر کی چٹانیں ہوتی ہیں. بات کر کے جانا کدھر، مجھے تو بات ہی نہیں پسند آئی، مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں، مجھے تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. یہ بھی بہت بڑا فتنہ بنتا ہے. سب سے زیادہ میں جو محسوس کرتی ہوں نا، انسان کو جو تکلیف میں چیز ڈالتی ہے نا، وہ اس کے نفس کی برائی ہے. اسی لیے اب اگلا حصہ ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے کہ پہلی قسم سمجھ آ گئی ہے ازمائشوں کی. آپ اپنے لیے کیا سوچیں کہ کسی پہ کوئی مشکل آئی ہوئی ہے نا، تو آپ کیا کہیں، اس کی ازمائش ہے، یہ ہے بڑی نیک بندی، یہ بڑی پیاری میری بہن ہے، بس اس کی ازمائش ہے. اور جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو آپ کیا کہیں کہ یہ میرے گناہ کی علامت ہے. اور ہم اکثر یقین کرے اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم اسے اپوزٹ سمجھتے ہیں. کسی کو دیکھے نا ذرا مشکل میں، کہتے ہیں دیکھے اللہ نے پھڑ لیا نا، اللہ اور پھڑے گا، میرا دل دکھایا سی نا، دیکھی آج انہوں نے کیڑے پہنے ہیں، استغفر اللہ. ہم عموماً اپوزٹ سمجھتے ہیں، دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے کہتے تو انہیں بھی اپنی بیوی نے بڑا ستایا سی، دیکھا بیٹی دا غم پہ گیا نا. یعنی مفتی مفتی اعظم ہم خود ہیں، فتوے دیتے بیچتے رہتے ہیں اور لوگوں کا حال پوچھ کہیں گے باہر آ کے، کہیں گے ہونی نہیں تھی شوگر چینی جو اتنی کھاتی ہے، تو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا، یہ پراٹھے تو اتنے کھاتی ہے. یعنی لوگوں کو آپ اپنا غم بتا کے نا سچی باتیں موقع دیتے ہیں کہ ہم پہ باتیں کرو. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی قسم سمجھ آ گئی. اب دوسری پہ چلتے ہیں، پھر دونوں کا تقابل ہوگا.